कयामत की घड़ी जरूर आने वाली है। मैं इसका वक्त छुपा कर रखना चाहता हूँ ताकि हर नफ्स अपनी कोशिश के मुताबिक बदला पाए। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको इस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे, वरना तू तो हलाकत में पड़ जाएगा। 3 सेकंड तक गौर करें। कोई बंदा हमें कयामत से गाफिल ना कर दे। अरे मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। मूसा गुनगा रहे हैं अपनी लाठी के, मेरे लिए लाजिम जरूरी, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। फरमाया, काल अल्किहा या मूसा, का फेंक दो इसको, हाईलाइट कीजिएगा। जो चीज मूसा को अपने लिए रखनी लाजिम लग रही थी, अल्लाह ने कहा फेंक दो। जब फेंका तो क्या हुआ? फल का हफाइजा या हैयतुन दसा, फिर जब उन्होंने फेंक दिया तो यकायक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। फरमाए, पकड़ ले इसको और डरो नहीं, फिर ऐसा ही हम इसको कर देंगे जैसी वो थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तो फिरौन के पास जा। वो सरकश हो गया। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरें खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें, और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, इसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर दे और इसको मेरे काम में शरीक कर ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें। हाईलाइट करें, दो भाई मिलकर तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तो हमेशा आप हमारे हाल पर निगरान है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जब कि हमने तेरी माँ को इशारा किया था, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है, और कहा कि इस बच्चे को संदूक में रख और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी भर की कहानी अल्लाह यहाँ रखते हैं। पहली बात देखिए कि मूसा ने कहा कि मैं इस असा के बगैर रह नहीं सकता, अल्लाह ने कहा फेंक दो। फेंका तो सांप बना, असल पे आ गया, क्योंकि जब अल्लाह ने किसी चीज को फेंकने को कहा तो वो हराम ही होगा ना। तो बस जब हम हराम चीजों को अपने हाथ में लेकर बैठे होते हैं और वो सांप होते हैं, फेंकते हैं तो पता चलता है ये तो सांप था, और ये सांप और रस्सी का फर्क कुरान पढ़ के आता है, वरना तुम हराम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आपको पता चल जाए कि ये चीज जहन्नुम के आंकड़े और सांप और बिच्छू है और आप उसमें खुशी से रहे। बहुत दिलों से और घरों से जो सुकून आज चला गया ना, उसकी वजह यही नुकता है। फिर दूसरी बात देखिए कि हम देख रहे हैं कि मूसा से अल्लाह का कलाम राह रास्ता है, हमारा भी दिल चाह रहा है अल्लाह से बात करें, तब तो अल्लाह आप और मुझसे कैसे कलाम करता है? बल हुआ कलाम अल्लाह, इस कुरान के जरिए। कुरान पढ़ते वक्त आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप कोई बोरिंग चीज पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव स्पीच दिखती है, अल्लाह और बंदे की बात दिखती है। फिर दूसरी बात आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब सांप नजर आया तो वो उनके लिए बहुत खौफनाक चीज थी, तो कहा पकड़ लो इसको। अलकेहा व खुजहा, अलकेहा व खुजहा, ये दो को जमा कर लें तो ये बंदगी है। सबमिशन क्या है? जिसको अल्लाह के छोड़ दो, बगैर क्वेश्चन किए रीजनिंग छोड़ दो, हराम है ठीक है अल्लाह जी पकड़ लो इसको, नहीं अल्लाह बहुत मुश्किल है, ये एक दो गज का टुकड़ा कंधों पे, सर पे, मुंह पे, चेहरे पे, नो का पकड़ो, बस पकड़ के डाल लीजिए। बस दफा हमें अल्लाह की कई भी चीजें बाकी मुश्किल लग रही होती हैं, अल्लाह के कहने पर छोड़ा तो वही चीज फायदे की बनाकर पेश कर दी गई। बहुत खूबसूरत नुक्ता नजर है इसमें। हम सब इसके लिए अपने लिए अल्लाह से दुआ करें। जब हम अल्लाह की नाफरमानियों को पकड़े रहते हैं तो फिर अल्लाह हमारा हाथ नहीं पकड़ता। दुनियावी सहारों को छोड़ो अल्लाह को थामने से पहले, फिर देखिए क्या होगा। हम कहते हैं दुनिया ना छोड़े अल्लाह को थाम लें, ये कभी नहीं होगा। तो जिंदगी से हराम निकलेगा तो हलाल आएगा, नाफरमानी निकलेगी तो फरमा बरदारी की हुआ आएगी। फिर दूसरी चीज हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि इशरह ली सदरी। कोई काम आपको मुश्किल लगे, हिजाब लेना, पर्दा करना, खराब चीजों को छोड़ना, नमाज अदा करना, वुजू करना, कुछ भी छोटे से या बड़ा, ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह आसान कर दे। रब के आसान करने से काम होता है। और दूसरी बात है, एक अकेला 2 11, मूसा अकेले भी जा सकते थे फिरौन के दरबार में, लेकिन दोस्त के तौर पे भाई को मांग लिया। आप चाहती हैं ना कि आपके लिए दीन पे अमल आसान हो, कोई एक अपना बड़ी बना ले, दोस्तों में, सहेलियों में, बहनों में, घर में कोई एक ले ले। आप दो है ना, कल देखिएगा आप दो से अब चार होंगी, चार से आप आठ होंगे, आठ से आप 16 होंगे, 16 से 64 होंगे, ये लाजमी होता है। तो जब अकेले रहते हैं ना तो सरवाइव नहीं कर पाते, रमजान के कुछ दिन के बाद दोबारा वही रंग चढ़ता है जो कि पहले चढ़ा हुआ था, तो नतीजा क्या होता है कि सब उतर जाता है। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला ने ये सारी बातें करके हम सबको ये बात सिखा दी कि करो और चलो, और इन सारी बातों को सुनते हुए ये सारी दुआएं भी करनी है कि अपने आप को ले। और आप देखिए कि वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, कुरान को मेरी पढ़ते वक्त मेरी गिरे खुले। खुद से पूछिए, कुरान सही पढ़ती हूँ, तिलावत ठीक है, लोगों को बयान करती हूँ तो ठीक लगता है। असल ये है कि जब कुरान को अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए पकड़ लेते हैं ना, तो फिर जुबान की गिरें खुलती हैं। एक साल लगाइए इस कुरान को सीखने के लिए, फिर देखिए दिल दिमाग की सारी गिरें खुलेंगी। और अगर इसको साइड इशू के तौर पे रखा हुआ, इट्स ओके, ये कभी दिल चाहे तो पकड़ लेंगे, कभी नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। अगर आप कुरान को पूरी तरह से लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपको कुरान का पैगाम दिल पे उतरता महसूस होगा, जुबान की गिरें खुलेंगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी बात में असर होगा। जब आपके अल्फाज में आपके जज्बात शामिल हो जाते हैं ना, तो दूसरों के दिलों में बात जाती है, और जज्बात लाने के लिए खुद आपको जज्बाती होना पड़ता है। ठंडे ठंडे कुरान पढ़ के चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तकमील की दुआ, और कोई अगर उसमें कोई खजूरें बट गई तो वो दैट्स इट, पूरा कुरान पढ़ जाते हैं लोग एक टस से मस्त नहीं होते। कई दफा मैं देख रही होती हूँ मस्जिदों में तरावियों में इतनी रुलाने वाली आयते हैं, झंझोड़ने वाली आयते हैं, कोई किसी की आवाज में एक्सप्रेशन नहीं, सुनने वाले बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, सिस्टर्स बातें कर रही हैं तो कर रही हैं, और अगर कोई पढ़ने वाला सिर्फ हाफिज है तो उसके अल्फाज साथ नहीं देते, जज्बात साथ नहीं देते अल्फाज का, क्योंकि उस बेचारे को नहीं मानी पता चलता। तो आप में से जिनके बेटे भाई शोहर हाफिज है, आप दुआ करें कि वो इसका तर्जमा सीखे, फिर अगले साल की तरावियों में देखिए वो भी रोएंगे तो दूसरे भी रोएंगे, और अल्लाह हमारी जुबान की गिरों को भी खोल दे। फिर फरमाए वल कई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी। ये अल्लाह का मूसा पर एक इनाम था, मूसा से तो खूबसूरत नहीं थे आपको पता है, दुनिया की नजर से अगर आपके काले रंग के थे, स्याह फाम थे, लेकिन इनके चेहरे पर अल्लाह ने ऐसी कशिश डाल दी थी कि जो एक दफा इनको देखता था इनकी तरफ खींचता था। और आज भी ऐसा होता है, अट्रैक्शन होती है और अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। पीछे भी आपने सुन लिया कि अल्लाह मोहब्बत डालता है, तो मूसा के लिए अल्लाह ने जो मोहब्बत डाली, और आज भी कई बच्चों के लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाली, कई बच्चे गोरे चिट्टे होते हैं इतनी मोहब्बत नहीं लेते, कोई बड़े सांवले से धीमे से होते हैं वो बड़ी मोहब्बत लेते हैं। तो याद रखिए मोहब्बत एक रिस्क है, हुस्न से नहीं मिलता, अल्लाह की मोहब्बत डालने से दिलों में मिलता है। तो फरमाया ऐसे इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। अब यहां मूसा की माँ पे भी थोड़ी सी बात करें, कितनी बड़ी बात है कि कहा कि तेरी माँ पर भी तो इशारा किया था कि इसको बच्चे को संदूक में डाल दे और संदूक को दरिया में रख। इमेजिन करिए एक औरत अपने बच्चे को दरिया की लहरों के सपुर्द करती, कितनी दफा मूसा को सीने से लगाया होगा, चूमा होगा, रोई होगी, फिर प्यार किया होगा, हाय मेरा बच्चा पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। मूसा की माँ को तो नहीं पता था अल्लाह इस संदूक को बचा लेगा। आज हम बच्चे को बेबी सिटिंग में दें तो हमें रोना आ रहा होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें रोना आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानते हुए माँ ने बच्चे को दरिया में डाल दिया। खुद से पूछिए क्या मेरे बच्चे क्या हथेली के छाले बन गए कि उनका नाम ले लेकर अल्लाह की किताब से दूर रहती हूँ। तो माँ ने तो दरियाओं में डाल दिया, हम तो अपने बच्चों को सिर्फ ट्रेन करके अगर अपने साथ भी बिठा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात को सुनने और समझने वाले होते हैं। अब बहन की मोहब्बत देखिएगा, फरमाया याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती थी मैं तुम्हें इसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश करे अच्छी तरह से, इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। बहन का किरदार याद रखिए, आप अपने बच्चे को जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट दे सकते हैं ना, वो भाई या बहन है। आप अपने बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने ला दें, आप उनको इलेक्ट्रॉनिक्स दे दें, वो खुश नहीं होंगे, उनको अपने साथ खेलने के लिए जीता जागता इंसान चाहिए। जब नेचुरली पहले दौर में देखिए दो दो साल बाद बच्चे आते थे, घर में ही बच्चे पल भूल जाते थे, पहला बच्चा होने तक दूसरा बड़ा हो चुका होता था, तीसरे बच्चे का तो पहला ही बच्चा पाल लेता था, घर में मुश्किल ही नहीं होती थी, माएं काम भी करती थी, बच्चे भी पालती थी। आज जब से हमने एक सिंगल फैमिली यूनिट रख दिया और उसको हमने कभी न्यूक्लियर फैमिली कह दिया, कुछ कह दिया, तो क्या हुआ, एक बच्चा आपकी आंखों का रोगी बन गया, अब सारा दिन आप ही उसके साथ है, तो बच्चा भी आपसे तंग आया होता है, जैसे आप उसे तंग आई होती हैं, तो बच्चों को उनके हाल पे छोड़ें। अगर आपके बस में है, अल्लाह के हाथ में यकीन है, लेकिन खुद से कभी ऐसे प्रिकॉशंस ना लें कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। देखिए, एक बेटा है ना, तब एक बेटी, हमारा अपना शौक होता है, हम कहते हैं हमारी औलाद बुरी, नेवर। भाई का भाई किधर है, तो भाई बहन की बहन किधर है। हर इंसान को बहन भाई दोनों का शौक होता है। आप अपने ऊपर ले ना, अगर आपके भाई ना होते तो क्या वो मोहब्बत महसूस करती जो आपको लगती है, और बहन का नाम सुनते ही दिल कैसे पसीजता है। तो अगर आपके दो बहन भाई हैं, बस खत्म जी, बस दो ही बच्चे काफी हैं, तो दोनों ही महरूम होंगे और दोनों ही दुखी रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, भाई बहनों का आपकी जिंदगी में खुशियां देने में बहुत गहरा असर होता है। दुख सुख में हमेशा भाई बहन सामने आते हैं। तो मूसा के साथ तो बचपन में बहन ने इतनी बड़ी नेकी कर दी कि फिरौन के दरबार में जाकर सुना दिया कि देखो एक बच्चा है जो इधर रो रहा है, तो अगर चाहो तो किसी की खबर दूं। ये सारी कहानी हम सूरह कसस में जरा थोड़ी कदरे डिटेल से पढ़ेंगे, यहां सिर्फ हम इसमें से अमल की बातें ले रहे हैं। तो खैर, क्या हुआ आगे देखिए। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी मां के पास पहुंचा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा न रहे। अल्लाह के नाम पर बच्चों को डिवोट करने पर बच्चे मरते नहीं है, अल्लाह वापिस आपको दिला देता है। और ये भी याद करो, जब तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया और हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है मूसा। हाईलाइट करें, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, देखो और मेरी याद में कमी ना करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, और नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। ये है असल में मूसा की पूरी जिंदगी की आजमाइशों पे अल्लाह ने जो हिकमत बता दी। देखिए, इंसान को अल्लाह अपने काम का बनाने से पहले कई मरहलों से गुजारता है। जैसे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा बहुत पहले कि जो एक चूड़ी किसी की बाजू में आती है तो वो 22वां या 22nd या 20th हैंड होता है जिस हाथ में वो जाती है। 20 हाथ लगते हैं फिर वो चूड़ी ढलती है और बनती है, और फिर वो बन के हाथ में आती है। अल्लाह इंसानों को ढालता है। आप अपनी जिंदगी को देखें, पीछे कितने मरहलों से अल्लाह ने आपको गुजारा होगा, कहाँ से आप गुजरी, क्या मुश्किल हुई, क्या हालात हुए, कभी फिर दीन से गुजरी, कभी दुनिया सीखी, आज आपको अल्लाह ने अपनी किताब के लिए बिठा लिया, आपको इंग्लिश सिखाई, आपको उर्दू सिखाई, आपको लोगों को पढ़ना सिखाया, आपकी शादी अमेरिका में की, आप इस शहर में आ गई, आपके शौहर, कितने मरहले गुजरे ताकि आज इस दिन इस तारीख को आप यहां बैठ के कुरान सीखें। तो ये अल्लाह के स्टेप्स होते हैं, और अल्लाह की हिकमत है, कभी मुश्किलों में डाल के अल्लाह लेके आता है, कभी खुशियों में। जिंदगी में जब कोई अनयूजल बात आए तो सोच लें कि बस तना तो कली जिक्री ली नफसी, अल्लाह मुझे चुनना चाहते हैं। बात हम औलाद माल की मोहब्बत में रहते हैं, अल्लाह वो मोहब्बत ले लेते हैं। चलो बच्चे वापिस करो, इसके दे दो मुझे, जाओ तो मेरी याद के लिए खाली हो जाओ। आप जिस बच्चे का नाम ले लेके हम जिंदगी में जी रहे थे, वो बच्चा अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह कहते हैं आ जाओ, बस तना तो कली नफसी, मैंने तुझे अपना बना लिया। याद रखिए, हमारा दिल इसकी तलब अल्लाह की मोहब्बत है। जब इस दिल में बच्चों को डाल लेते हैं तो वो शरीक बन जाते हैं, घर को, औलाद को, माल को, बीवी बच्चों को, हद से ज्यादा जब दिल में बिठाते हैं ना तो फिर अल्लाह याद नहीं आता। तो इसलिए हर चीज को उसकी जगह पे रखें, जो है वो भी, जो नहीं है उसको भी। अब दोनों सामने आते हैं, दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या हम पर पिल पड़ेगा, पर मैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। और याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले हर इंसान को अल्लाह ताला यही खबर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह का साथ मिल जाए तो कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, और अल्लाह ताला मदद भी करेगा। जाओ इसके पास और कहो हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दो और इनको तकलीफ ना दो, हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए, और सलामती है उस शख्स के लिए जो राह रास्त की पैरवी करे, हमको वही से बताया गया कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए और मुंह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा, अब जरा फिरौन की नेगेटिविटी देखिएगा, मैं लफ्जों के पढ़ने के अंदाज से आपको फील कराऊंगी कि फिरौन कितना नेगेटिव सोच रखता है और मूसा कितनी पॉजिटिव बात करते हैं, और फिरौन कैसे बार बार मूसा को डिट्रैक्ट करना चाहता है। फिरौन ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को इसकी साख बख्शी, फिर इसको रास्ता बताया। फिरौन बोला, अच्छा, अब देखिए उनको घुमरा रहा है ताकि पिछले लोगों की बात करके मूसा को गुस्सा दिलाऊं। कहने लगा, पहले जो नस्लें गुजर चुकी है फिर उनकी क्या हालत थी, यानी वो किधर है, जन्नत में कि जहन्नम में? आज भी लोग कहते, अच्छा जी, फिर क्या हमारे बड़े गलत है, क्या वो सारे जहन्नम में गए? तो मूसा ने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह हर गेंद को खेलना नहीं चाहा। यहाँ आपको मूसा की सूरत में बहुत खूबसूरत तरीके से तबलीग के नुक्ते दिखेंगे, और हम इस पे डिटेल में जब पढ़ते हैं तो बहुत गहरी बात होती है कि कैसे हमने लोगों को दीन की बात की दावत देनी है। मूसा का जवाब सुनिए, कहने लगे इसका इल्म तो मेरे रब के पास एक जगह लिखा हुआ महफूज है। हाँ, मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है, वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और इसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से मुख्तलिफ अकसाम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां अकल रखने वालों के लिए। हाईलाइट कीजिएगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया, सोचे, और इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। ये 3 मरहले, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये 3 सेकंड सोचिए, जब मैं इस जमीन में दोबारा दाखिल कर दी जाऊंगी, मनो मट्टी मेरे मुंह पे डाल दी जाएगी, तो मेरा क्या हाल होगा। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई मगर वो झुटला ही चला गया और माना ही नहीं। कहने लगे मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल दे? अच्छा, अब हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाएंगे। कैसा जादू? तय कर ले कब और कहां मुकाबला करना है। ना हम इसकी करारदाद से फिरेंगे, ना तू फिरना, खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा होंगे। फिरौन ने पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले पर आ गए। अल्लाह ने इस्लाम को फैलाने के लिए एक गैर मुसलमान हुक्मरान को चुन लिया। अगर मूसा खुद रिक्वेस्ट करते कि फिरौन जरा अरेंज कर दीजिए, मेरे पास एक हक बात है, लोगों तक कन्वे करना है मैसेज, जरा अपना माइक ही दिलवा दीजिए, जरा टीवी पे एक एड दिलवा दे, तो फिरौन 100 नखरे करता। लेकिन फिरौन ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे लिए लोगों को जमा करता हूँ। मीडिया जमा कर लिया, सब जर्नलिस्ट आ गए, सब रिपोर्टर आ गए, अखबारी नुमाइंदे आ गए, और वहां मूसा की बात हो गई। तो याद रखिए, अल्लाह मुसलमानों को मदद देगा तो गैर मुस्लिमों की सब चीजें मुसलमानों के काम आएंगी। सिर्फ मुझे और आपको अल्लाह की मदद को लेने वाले काम करने, फिर इंशाल्लाह फायदा होगा और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और वो सब लोग जमा हो गए। मूसा ने ऐन मौके पर ग्रोहे मुकाबिल को मुखातिब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, वरना एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर दिया जाएगा। झूठ जिसने भी खड़ा वो ना मुराद हुआ। यानी मूसा ने जादूगरों से मुकाबला करने से पहले तबलीग की, जैसे हजरत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले तबलीग की। एक सच्चा मोमिन हर मौके को दावा का मौका बना लेता है। दावत भी करते हैं ना आप लोगों की खाने की, उसमें भी कुछ दावा करें, फिर खिला पिला के ना भेजें, उनकी रूह को भी खिलाएं पिलाएं। और मूसा की दावत नाकारा नहीं गई। ये सुनकर इनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया, यानी जादूगरों के दिल में एक हल्की सी चोट तो पड़ी चुकी मूसा की इस बात से, और वो चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा, ये दोनों तो महज जादूगर हैं, इनका मकसद ये है कि जादू के जोर से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारे मिसाली तरीका जिंदगी का खात्मा कर दें। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ, बस अब ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। यहाँ हाईलाइट कर, बड़ी अहम बात है उम्मते मुस्लिमा के लिए आज के हालात में। देखिए कि जो मुसलमान अपने दीन पर अमल करते हैं ना, तो उसके 2 मुख्तलिफ रुख होते हैं। एक वो दीन है जिस पे अमल करने से गैर मुस्लिमों के तरीके जिंदगी पे कोई हर्फ नहीं आता। मसलन आप नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, उमरा करें, उनको कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि बाज़ गैर मुस्लिम हुक्मरान ऐसे मौकों पे मुसलमानों को मुखातिब करके मैसेजेस भी देते हैं, रमजान का मैसेज फलां का और फलां का, रमजान का और उमरे का, दे डोंट माइंड, उनको क्या लगे। लेकिन दीन का एक दूसरा रुख होता है, वो तरीका है मुसलमानों का जिससे उनके लाइफस्टाइल पे चोट पड़े, उनके कल्चर पे जद पड़े, उनकी तहजीब और तमद्दन जिन बुनियादों पे कायम है उस पे चोट पड़े, तो उस पे वो इतने ऑफेंडेड है कि इस पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके उसे 1-1.5 गज के टुकड़े को बदनाम कर देते हैं। मसलन मर्दों का जिहाद और औरतों का हिजाब, आज के दौर का पेटी इशू, अदालतों में कोर्ट में चले गए लोग, बैन कर दी, पाबंदियां लगा दी, ऐसे लोगों को जाकर जेलों में बंद कर दिया। भाई आपको एक एक गज के टुकड़े और इतने से मुंह को छुपाने से क्या मिलता है? आपके तो बहुत सारे लोग खुद पर्दा करते हैं सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए। आपके तो डॉक्टर्स खुद ऑपरेशन करते वक्त ये पर्दा करते हैं, धूप में काम करने वाले सन से बचने के लिए करते हैं, सड़कों को कूटने वाले करते हैं। आपको क्या इशू है? ये हाईलाइट कर लीजिए, तरीकतुकुमुल मसला। वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कल्चर आम हो। वो कहते हैं नहीं, इससे बात होगी। और इससे लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि अल्लाह की पनाह। एक दर्स था तो उसमें एक स्पीकर थे, तो अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने एकदम हाथ ऊपर किए तो दिखाया कि आज का वह सिर्फ इसे एक गज टुकड़े से डर रहा है, और वो नकाब था। वजह क्या? उनको अपनी ख्वाहिशों पर चोट पड़ती दिखती है। आप सब तरावियां पढ़े, तहज्जुदें पढ़े, बल्कि वो कवरेज देंगे। और बाद में मुसलमान इतने भोले हैं कि ऐसी ऐसी खबरें जरा बड़े चैनल्स पे देखते, कहते देखो इतने मुसलमानों की तरावी दिखाई, नमाज दिखाई, हज दिखाते। कितने नेक लोग हैं ये मुसलमानों का हज और उमरा दिखाते हैं। दे डोंट माइंड, वो दिखाएंगे, आपको भी खुश करना है उन्होंने। आप कहते देखो सदर कितना अच्छा, उसने मुसलमानों की कितनी तारीफें की हैं। आप दीन पे अमल करें, आपकी दाढ़ी आपके लिए हुज्जत है, आपका पर्दा आपके लिए हुज्जत है। तो आज उम्मत वसत को अगर जोश आ जाए और आपके हम अपने तरीका तुमकुमुल मुस्ला पे फख्र करते हैं, तुम अपने घर खुश हम अपने खुश, सारे मुसलमान जितने इस वक्त नॉन मुस्लिम मुल्कों में, अगर आज इस साल के रमजान में उनको ये यकीन आ गया, चले जिसने भी सुन लिया कि ये तो मेरी इज्जत का मसला है, जब वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़े? छोड़िए अभी अल्लाह का सवाब और अल्लाह का खौफ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम अपनी मुस्लिम अटायर कर लेना बाहर जाते हुए, करो हमें जो मर्जी करें, तो मेरा ख्याल है कि एक दफा तो लोग सोच लेंगे कि ये मुसलमान जाके। और हाल क्या? आप इसको मिसाल से समझ लीजिए, वक्त तो इतना नहीं है, लेकिन जब आप गीदड़ को, गीदड़ की खाल है ना, उसमें भूसी भर लें या शेर की खाल में भूसी भर लें, दोनों बराबर है ना। लोग शेर से डरेंगे ना गीदड़ से डरेंगे, कि दोनों नकली हैं। वो तो आपके डमी रख के घरों में भी कहीं ना कहीं रखे होंगे ऐसे शेर, लेकिन जब आप असली शेर बनाकर पेश करें और जिंदा शेर आंखों में आंखें डाले, लोग खौफजदा होंगे। आज मुसलमान उम्मत को अगर ऊपर उभरना है तो आपको पहले इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि जब मैं गैरों में जाऊंगी तो मैं जरूर मुस्लिम दिखूंगी। अपने मुल्कों में जाके ना करें, आप सऊदी अरब जाएं कुछ ना करें, जो मर्जी पहने आपका दिल करे, नो प्रॉब्लम, घर की बात है। घरों में तुम कुछ भी पहन ले, मैं कोई कुछ नहीं कहता। गैरों में जब आएंगे तो खूब अच्छे मुस्लिम बन के आए, ये अर्ज लेकर निकलेंगे। देखिए लोगों को यकीन होगा कि हम अब इन पे इतनी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े लोग करते ना काम तो सबको चुप, फिर थोड़े से करते हैं निशाना बंद, सारे कर ले लोग उसको एक किस्म का मखौल समझ लेंगे। तो मूसा बिल्कुल नहीं घबराए, और फिरौन को खतरा लग गया कि मेरा लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा और मेरी वेस्टर्न तहजीब चली जाएगी। जादूगर बोले मूसा तुम फेंकते हो या पहले हम फेंके? मूसा ने कहा नहीं, तुम ही फेंको, यकायक इनकी रस्सियां और इनकी लाठियां जादू के जोर से मूसा को तोड़ती हुई महसूस होने लगी। और मूसा अपने दिल में डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि बशर थे, इंसान थे, और डर ये था कि यहाँ इस्लाम हक जो है वो मखलूब ना हो जाए। हमने कहा डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे, फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगले जाता है, ये जो कुछ बना लाए हैं ये तो जादू का फरेब है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकते, ख्वाह किसी शान से वो आए, आखिर यही हुआ। देखिए जादूगरों के दिल में तासुब नहीं था ना, तो यही हुआ क्या? सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। अंदर से एक अर्ज उठी, पकड़ उठी कि अब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फिरौन ने कहा तुम इस पर ईमान लिया है कबल इसके कि मैं तुमको इजाजत देता? हर दौर के डिक्टेटर्स का यही ख्याल है कि लोगों को हमसे पूछ कर ईमान लाना चाहिए। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूँ, टॉर्चर सेल, और खजूरों के तनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पर, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा। देखिए बातिल हमेशा टॉर्चर पे आ जाता है क्योंकि उसके पास दलील कोई नहीं होती। जादूगरों ने जवाब दिया कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया। हाईलाइट कीजिए, आज इस कॉन्फिडेंस की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। उम्मत वसत अगर ये जुमला आज के दौर में आम कर देना तो सब लोग ठीक होके बैठ जाए, कभी कोई आपको फिर धमकियां ना दे। कसम है उस जात की जिसने हमें पैदा किया, बताए हमें भी उसी ने पैदा किया ना। ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सच्चाई पर तुझे तरजीह दें। 3 सेकंड गौर करें, क्या ये सब कुछ हम नहीं बोल सकते? अल्लाह बड़ा रब है कि दूसरे बड़े हैं? कैसे हो सकता है कि हम तुझे प्रायोरिटाइज कर ले, रब को छोड़ दे? हाँ, जो कुछ तूने करना है जा कर ले। सच बोलता है, हक में बड़ी ताकत होती है। तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला करेगा ना, तो जा कर ले। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं माफ करे और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वो ही बाकी रहने वाला है। तो आकर याद उम्मत मुस्लिमा को वो बात समझ आ जाए जो मूसा के जादूगरों को समझ आ गई थी।